पृष्ठ संख्या 32। जो माता पिता अपनी लाडली बेटी को सुखचैन से रखते हैं, प्यार से उनका सांगोपान करते हैं और युवा होते ही कन्यादान करते हैं, उस पर यदि तुम धौंस जमाना चाहोगे, उसे लात मुक्कों से मारोगे तो उस स्त्री के मन पर क्या गुजरेगी? कभी इसका विचार भी आया है तुम्हारे मन में? तुम्हारा आचरण अंदर गूदड़ और ऊपर से मखमल जैसा ढोंगी ही है। स्त्री सदैव तुम्हारे संसार के लिए कष्ट सहती है, तुम्हारे इच्छानुसार अपना आचरण करती है, अपने खून से सींच कर तुम्हारे संसार रूपी बगीचे को संभालती है। तुम्हारी एक हंसी उसके लिए स्वर्गानंद की प्राप्ति है। और जब अमृत स्वामी गौरव यह तुम ही कहते हो, तो अपनी पत्नी द्वारा बनाई छोटी कृति की तारीफ कर पत्नी को खुशी देने में तुम कंजूसी क्यों करते हो? परंतु नहीं, तुम तो अपनी पत्नी को निंद विशेषणों से जलील करते हो। क्या यही उसका प्रारब्ध है? आह रे देव, तेरी भी ऐसी विचित्र गति क्यों? आजन्म पति के लिए कोल्हू के बैल की तरह पीसने वाली स्त्री को अपने मुख से शब्द निकालने की न अनुमति है, न घर पर उसका अधिकार। यही तेरा न्याय? हे विधाता, स्त्री के माथे पर यह कैसा बनवास लिख डाला तूने? पृष्ठ संख्या 33। यदि ऐसे ही हर स्त्री की तकदीर है, तो उसका निर्माण ही क्यों किया तूने? कम से कम तुझे लच लच गालियां तो नहीं सुननी पड़ती। परमेश्वर, तू भी बड़े चालाक हो। अपनी ही जाति को स्वच्छंदता और स्वतंत्रता दी है, तुम्हें भी पुरुष होने का अभिमान है क्या? दोनों का निर्माण तो तुमने किया है, फिर स्त्रियों की हालत इतनी बदतर क्यों की हे विधाता? क्या पुरुषों में अवगुण रहते ही नहीं? सतयुग में पुरुष अपने वचन निभाते थे, इसलिए स्त्री हठ, बाल हठ और राजहठ का निर्माण हुआ। आज की स्थिति में तो केवल पुरुष हठ ही चलता है। स्त्री ने यदि किसी बात के लिए हठ किया भी तो उसकी सुनता कौन है? उल्टे उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है ताकि अन्य स्त्रियां भी चुप रहें। यहाँ एक काव्य वचन दिए देती हूँ। स्त्री केवल कुल्हाड़ी, सबल वृक्ष तोड़ी, प्राणी त्रस्त कोटि कोटि, मूर्तिमंत व्याधि। इतने सारे अवगुण नारी के माथे पर थोप कर क्या तुम पुरुष सद्गुणों के बुत बन गए हो? तुम्हारे विचारों में यदि नारी तुम्हारा पुण्य वृक्ष काटने वाली कुल्हाड़ी है, तो अपनी निर्मिति का अधिकार तुमने उसे क्यों दिया है? कम से कम यह तो मत भूलो कि तुम्हारा जन्म भी उसी की कोख से होता है। तुम्हारी बुद्धि बलिष्ठ है, इस बुद्धि से तुम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। सृष्टि में जो अब घटित है वह सब तुम कर चुके हो। नारी यदि अनेकानेक संशयों का भंवर है भी, तो उसके संशय केवल अज्ञान के कारण रहते हैं, परंतु तुम्हारे मन का संशय चक्र इस गति से घूमता रहता है कि किसी की नज़र भी न रुक सकेगी। तुम्हारे मन में जो दगाबाजी के जो विविध संभ्रम रहते हैं, वह सब भ्रम नारी के मन में नहीं रहते हैं। पृष्ठ संख्या 34। हर नारी सूर्य के समान सतेज, गंगा के समान निर्मल रहती है, ऐसा नहीं, लेकिन मन में संसार चक्र रखने वाली नारियां 100 में 10 के बराबर रहती हैं, और तुम लोगों में एक गंगा जल की तरह निर्मल अंतर्वाह मिलना भी मुश्किल है। तुम सब एक ही माला में पिरोए मोतियों की तरह हो। स्त्री को अविचारी कर्म का नगर कहा जाता है, तो क्या तुम विचारशील, विवेकी, उचित कर्मकार हो? तुम्हारे हाथों से इतने अविचार हुए हैं, होते हैं, और फिर भी अपने आप को तुम विचारशील कहलवाते हो। धन्य हो तुम। स्त्री भैंसों के समान मूर्ख कहलाती है, उसे न पढ़ना आता है न लिखना, तो क्या ईश्वर ने उसे बुद्धि ही नहीं दी है। अविचारी होते हुए भी वे तुमसे तो अच्छी हैं। तुम अपने आप को जरा देखो भी, स्वयं को सयाने विद्वान समझते हो, फिर भी कारागृहों में तुम्हारी ही भरमार है। किसी ने जाली रुपए बनवाए, किसी ने खून किया, किसी ने रिश्वत ली, कोई दूसरे की बहू लेकर भागा, राजद्रोह किया, किसी न किसी गुण के कारण सरकार ने तुम्हें बंदीशालाओं में आतिथ्य प्रदान किया है। स्त्रियों ने ऐसे कितने अपराध किए हैं, कितने कारागार स्त्रियों से भरे हैं। 2-3 हजार पुरुषों में 100 औरतें भी गुनाहगार नहीं होंगी। उनके हाथ से यदि कोई अपराध होता भी है तो वह है परद्वार का स्वीकार, दूसरा घर करना, परंतु इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? निर्लज्ज नारी भी अपनी ओर से किसी पराए पुरुष के गले नहीं लगती। स्त्री के लिए सुख का क्या अर्थ है? केवल वही जो सुख उसे अपने पति के सच्चे प्रेम से मिलता है। यदि ऐसा होता है तो वह स्त्री दरिद्रता को भी सह लेती है। किसी चीज़ का अभाव उसके लिए अभाव नहीं रहता, दुखों में भी वह सुख ढूंढती है। पुराणों में पुत्रहीन राजा की मृत्यु के उपरांत वंश वृद्धि के लिए उसकी रानी को पर पुरुष से नियोग की सम्मति दी गई है। क्या यह पर द्वार नहीं, व्यभिचार नहीं? पृष्ठ संख्या 35। ऐसी सम्मति के बजाय पुनर्विवाह की अनुमति क्यों न दे दी गई? उसे राज संरक्षण तो मिल जाता, संतानहीन राज आज जिस प्रकार विधवाओं के बाजार भर हैं यह तो न होता। इससे अपना खजाना भरकर सरकार ने इस देश को जो भिखारी बना दिया है, यह स्थिति तो न रहती। और तुम भी क्या कम हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तुमने इन रूपवती प्रमदाओं को ऐसे विपन्ना अवस्था में ला छोड़ा है कि पूछो मत, पुनर्विवाह की मान्यता रहती तो इनकी ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती। एक पत्नी को संतान नहीं, इसलिए एक के बाद एक तुम शादियां करो। पति की मृत्यु होते ही फिर से ये सब अपने नसीब को कोसती रहती हैं। फिर यहाँ वंश हो या न हो, स्त्रियों का मन कोमल होता है और वे अल्प संतुष्ट भी रहती हैं। बड़े बड़े ओहदों के लिए, पैसे के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए स्त्री कभी असाध कृत्य नहीं करती, और तुम सारे दुष्कृत्यों का बोझ उसके सिर पर मरते हो। दोषों के निदान तो तुम हो, तुम्हारे ही कारण स्त्री दोषी हो जाती है। कितने ही पिता अपनी 10 वर्षीय सुकोमल कन्याओं को धन के लालच में धनवान 90 साल की उम्र वाले बूढ़ों को बेच देते हैं। बाग के घर अपने ही हाथों अपने ही लड़की को पहुंचाते हैं। नारी का जो सुख पति के साथ रहने में मिलता है, क्या वह सुख बूढ़े पति की मृत्यु के बाद रुपयों की खनखनाहट से मिलेगा? पति न हो तो दुनिया उसके लिए घना अंधियारा जंगल ही बन जाती है। वह बवंडरों से उसे क्या लेना देना? सती कोष्टक में पूना की सार्वजनिक सभा में कहा गया कि सती प्रथा पर डाला गया बंधन यदि सरकार उठाएगी तो अच्छा होगा। तुम लोगों के लिए तो यह अच्छा ही होगा, लेकिन आग की ऐसे झुलस तुम क्यों नहीं पत्नी की मृत्यु के बाद चखते? स्त्री यदि सती हो गई तो उसके बच्चे को संभालेगा कौन? कहावत है कि घोड़ा घूमने वाला बाप चाहे तो मरे, लेकिन चरखे पर धागा बुनने वाली माँ नहीं मरनी चाहिए। कोष्ठक बंद की प्रथा कम से कम इसलिए तो अच्छी थी कि ऐसे अपमानित जीवन से तो मुक्ति मिलती। जीवन भर विद्रूप होकर चमगादड़ों का जीवन तो न बिताना पड़ता। माँ और पति दोनों ही न रहें तो यौवन की आग में झुलसती यह यौवना जाए भी तो कहाँ जाए? जरठ कुमारी विवाह का परिणाम परिणाम यही होता है।